ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் சிருஷ்டிகே கணகணமே வியாப்த் சப்கே அந்தர் விராஜமான் उनके ही असीम कृपा से हम लोग ऋग्वेद या ऐतरेय उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे थे. सबसे पहले यहां श्रुति बता रही है, आत्मा वा इदमेव अग्रे आसी, पहले ये आत्मा ही था. ये जो आत्मा किसको कहते हैं, हम सुनते हैं आत्मा 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 करके. तो इसलिए कल हम विचार कर रहे थे आत्मा और शिव दो नहीं है, एक ही है. शिव का मतलब है कल्याण, आत्मा का अर्थ भी कल्याण है. कल्याण का मतलब है सारे दुख निवृत्ति, यही कल्याण है. और कोई कल्याण नहीं, सारे दुखों की निवृत्ति ही कल्याण है. इसलिए शिवम कल्याणम, वही आत्मा है. तो ये छह ऊर्मियों के कारण, छह तरंगों के कारण हम शिव होने पर भी जीव बने हैं. कल ही कहा दिया था, शुदा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मी रहितो शिवः. ये भूख और प्यास है, ये प्राण का धर्म है, स्वस्थ सिद्ध होता है. जब तक हमारे शरीर में प्राण पंच है तब तक भूख लगती है, प्यास भी लग रही है. शरीर से प्राण निकल गया, न उसकी भूख रहेगी न प्यास रहेगी. तो प्राण का जो धर्म है दो, मान लिया मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं. आप तो उस भूख और प्यास का दृष्टा हो, भूख और प्यास को देखने वाले हो आप, क्योंकि भूख और प्यास और किससे आप देख नहीं सकते हैं. जैसा बाह्य पदार्थ को हम लोग देख रहे, आंख से देख रहे, क्या आप भूख को आंख से देख रहे क्या? इसका मतलब आपको भूख नहीं लग गई. यदि है तो देखना चाहिए, भले अनुभव हो रहे आपको, वैसा ही वो आत्मा तत्व है. नहीं देख रहे, अनुभव हो रहे, उसको आप देख रहे, प्रकाशित कर रहे भूख और प्यास को. इसलिए कोई देख रहे वही पदार्थ है, नहीं देख रहे वो नहीं है, आप नहीं कह सकते. उससे अतिरिक्त भी है, हमारे दृष्टि का विषय नहीं, उससे अलग भी वस्तु है, वो अनुभव गम्य है. जैसा एक गुरु के शिष्य थे, वेदांत अध्ययन करते थे. वेदांत में जो आत्मा का निरूपण आ रहा था, उन्होंने प्रश्न किया, गुरु जी शास्त्र में बता रहे एक आत्मा है, ईश्वर है, कहां दिख रहे है? तो देखना चाहिए। गुरु जी ने समझा दिया युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा, जो देखा जाता है वही वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी भी वस्तु है जिसको आप देख नहीं सकते, नहीं माना। जो नहीं देख सकते हैं उसको हम कैसा मानेंगे? बहुत समझा दिया, नहीं माना। एक दिन आके बैठे गुरुजी के पास, कमंडल था, उठा के एक जोर से मार दिया, चिल्लाने लग गए। बोले तो क्यों चिल्लाते हो? गुरुजी मुझे दर्द हो रहे। अच्छा, मुझे तो नहीं देख रहे है तो थोड़ा दर्द दिखा, वो कहां हो रहे? नहीं गुरुजी मुझे दर्द हो रहे। गुरुजी ने कहा मुझे नहीं देख रहे, यदि है तो देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी देख रहे नहीं किंतु अनुभव हो रहे। बेटा वैसे ही आत्मा नहीं देख रहे, अनुभव हो रहे। तेरी भूख आपको नहीं देख रहे किंतु अनुभव हो रहे, दर्द आपको नहीं देख रहे किंतु अनुभव हो रहे। सामने वाला व्यक्ति केवल उसका चेहरा देख सकते हैं, चिल्ला रहे, अर्थात उसके अंदर कुछ दर्द हो रहे, अनुमान कर सकते हैं, किंतु जिसको दर्द हो रहे उनको अनुभव हो रहे। तो इसलिए जो भूख और प्यास है उसको आप देख रहे, उसका आप दृष्टा है, उसका आप साक्षी है, किंतु मानते हैं मैं भूखा। उस दृश्य के साथ कोई संबंध नहीं है, बस अपना धर्म बना दिया। क्या दृश्य पदार्थ दृष्टा का कभी धर्म बनेगा? कभी नहीं बन सकता है। प्रकाशक का धर्म कभी प्रकाश्य नहीं बन सकता। मान लीजिए सूर्य सारा जगत को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य प्रकाशक है, सारे पदार्थ प्रकाश्य है, नाले को भी प्रकाशित कर रहे, सुंदर फूल का बगीचे को भी प्रकाशित कर रहे, सुंदर जो बगीचे का जो पुष्प का सुगंध से क्या सूर्य सुगंधित हो रहे? नाले को प्रकाशित कर रहे उस गंदगी के द्वारा क्या उसमें दुर्गंध आ रहे? नहीं आ सकता है, क्योंकि वो प्रकाशक है, प्रकाश्य धर्म उसका नहीं बन सकता। वैसे ही आप प्रकाशक हो, आप साक्षी हो, आप दृष्टा है। भूख को आप देख रहे, प्यास को देख रहे, किंतु मैं भूखा मैं प्यास, ये दो उर्मी अपने में आरोप किया। क्षुधा पिपास प्राणस्य मनसा शोक मोह को, ये शोक और मोह मन का धर्म है। थोड़ा सा विचार करने से अपने आप सिद्ध कर सकते हैं, युक्ति के द्वारा सिद्ध कर सकते, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। एक अन्वय होता है, एक व्यतिरेक होता है। तत्सत्वे तत्सत्वम ये अन्वय है, तदभावे तदभावा ये व्यतिरेक है। जैसा मिट्टी है घड़ा है, ये अन्वय है। धागा है तो वस्त्र होगा, मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं है, व्यतिरेक है। भाव को लेके जो हम सिद्ध करते हैं उसको अन्वय कहते हैं, और अभाव को लेके सिद्ध करते हैं उसको व्यतिरेक कहते हैं। वैसा ही अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा हम सिद्ध कर सकते, मन है सुख दुख है, कहां जागृत में। कहां स्वप्न में। जागृत में भी हमारा मन काम कर रहे, स्वप्न में भी मन काम कर रहे, इसलिए मन है तभी सुख दुखी होते। मन नहीं है, सुख दुख भी नहीं है। सुषुप्ति में मन भी नहीं रहता है, सुख दुख भी नहीं होता है। इसलिए अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सुख और दुख है, ये मन के धर्म सिद्ध होते हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं मनसा शोक मोह को, किंतु बोलते हैं मैं दुखी हूं। आरोप किया मैं में, दुख को भी आप देख रहे, मैं सुखी हूं। तो मैं सुखी हूं, आप अलग हो गए, सुख अलग हो गया। मैं दुखी हूं, दुख अलग हो गया, आप अलग हो गए। दो पदार्थ है वहां, स्पष्ट भान हो रहे। भान का मतलब ऐसा नहीं विचार के द्वारा, आंख से नहीं भान हो रहे। तो सुख को भी आप देख रहे, दुख को भी आप देख रहे, किंतु ये दोनों धर्म स्वयं में आरोप किया, दृष्टा में आरोप किया, साक्षी में आरोप किया, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। ये चार ओर में हो गई। जन्म मृत्यु शरीरस्य, ये जन्म और मृत्यु किसका है? शरीर का। जो शरीर का जन्म हुआ है और शरीर का ही नाश हो रहा है, तो शरीर का मतलब स्थूल शरीर, विशेष रूप से वहां स्थूल शरीर को संकेत कर। ऐसा तो तीनों शरीर भी मरता है, स्थूल शरीर भी मरता है, सूक्ष्म शरीर भी मरता है, कारण शरीर भी मरता है, किंतु सूक्ष्म और कारण शरीर को मरने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं मरेगा वो। स्थूल शरीर तो प्रारब्ध समाप्त होने पर मर ही जाता है। प्रारब्ध को लेके आया है, प्रारब्ध समाप्त होते हुए मर जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर ये निरंतर रहेगा जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होगा। पहले भी एक दिन बताया था चार प्रकार का प्रलय है। एक प्रलय से तो अभी हम लोग आए हैं अभी सृष्टि करने के लिए, वो प्रलय है नित्य प्रलय सुषुप्ति। किंतु जो जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होगा तब तक ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नष्ट नहीं हो सकता है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब सबका जो मूल कारण है उसको कहा है महामृत्यु। बाकी सब मृत्यु है, एक महामृत्यु माना है, वो महामृत्यु है, वो मूल मृत्यु है अविद्या अज्ञान। उस मृत्यु को आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप अमर नहीं होंगे, इसलिए वो महामृत्यु माना है। वो महामृत्यु है, मूल मृत्यु है, अज्ञान है, उसका जो नाश होना उसी को ही कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक का मतलब सदा के लिए, बाकी तो प्रलय हो रहे कुछ समय के लिए होता, वो आत्यंतिक नहीं। नित्य हो सकता है, नैमित्तिक हो सकता है, प्राकृत हो सकता है, सदा के लिए वो एक ही है। वो जो आत्यंतिक प्रलय है वो केवल ज्ञान से ही संभव है, और उसको कोई प्रलय दूसरा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये स्थूल शरीर है वो प्रारब्ध के बाद समाप्त होता है और दोबारा जन्म भी लेता है। तो इसलिए जन्म और मृत्यु है शरीर का धर्म है, स्पष्ट है, किंतु बोलते हैं मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो रही है, डाल दिया उस साक्षी आत्मा में। इसलिए कहा जन्म मृत्यु शरीरस्य षडूर्मी रहितो शिवः, इनको ऊर्मी कहा दिया, तरंग कहा दिया, इच्छे को प्राण के दो, मन के दो, शरीर के दो, इच्छे हो गए। इच्छे ऊर्मी जिसमें रहेगा वो जीव है और छे ऊर्मी जिसमें नहीं रहेगा वो शिव है। शिव का मतलब आत्मा है। रुद्रोपनिषद में भी बता दिया शिव और जीव में कोई अंतर नहीं, इतना ही कल भी मैं एक संकेत दिया था, धान और तंडुल के समान, धान और तंडुल अंतर क्या है, जिसके ऊपर छिलका रहेगा हमने धान कहा दिया, छिलका हटा दिया उसको तंडुल कहा दिया। वैसे ही हमारे ऊपर पांच छिलके हैं, एक नहीं, अन्नमया है, मनोमया है, अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, ये पांच कोश है छिलके के समान है और उसके अंदर आनंद रूप तंडुल पड़ा है। जैसा वहां धान का छिलका हटाने से आप तंडुल सामने होता है, वैसे ही यहां पांच छिलके को हटाना, वहां तो आप कूट करके हटा सकते, यहां कूट करके नहीं, यहां भी कूटना पड़ता, ऐसी बात नहीं है, वहां तो मूसल से कूटते, यहां तो मूसल है आपको भगवान ने दिया है बुद्धि, बुद्धि रूप मुसल से कूटना पड़ेगा, अर्थात विचार, कूटने का मतलब विचार, बुद्धि रूप मुसल के द्वारा विचार करना पड़ेगा। विचार करते करते अर्थात क्या मैं अन्नमय कोश हो सकता हूं, क्या मैं शरीर हो सकता हूं, क्या मैं प्राणमय हो सकता हूं, क्या मैं मनोमय हो सकता हूं, क्या मन का दृष्टा हूं मैं अथवा स्वयं मन, ये विचार से होगा, क्योंकि तैतरीय उपनिषद में उसमें बहुत सुंदर विचार दिया है। तो विचार करते करते आपका विचार अंततः जाके जहां रुक जाता है, आगे आपके अंदर कोई संशय नहीं रह सकता है। मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा जिज्ञास्य पदार्थ को जानने के बाद आपकी जिज्ञासा समाप्त होती है। जिज्ञास्य मतलब जिज्ञासा का विषय, इसलिए आता तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया, अर्थात आप जिज्ञासा कर रहे जानने की इच्छा, उस जिज्ञासा का विषयभूत जो जिज्ञास्य है उसमें अभी यदि स्थित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, तब तक जिज्ञासा होती रहती है। इसलिए जन्म और मृत्यु है शरीर का धर्म है और डाल दिया अहम मरिष्ये, मैं मरू, तो इसलिए जो छह ऊर्मि से रहित शिव कहा जाता है वही आत्मा है, उसको संकेत कर रहे। शिव का ही दो स्वरूप है, कल भी मैंने संकेत किया था सायं का, और उस शिव को यदि प्राप्त करना हो आपको चार चीज आवश्यक है, वो सबको पता है, विवेक वैराग्य शर संपत्ति मुमुक्षुता। शिव का परिवार में भी देखिए, वहां भी चार है आपके। विवेक का प्रतीक है गणेश है, क्योंकि गणेश विवेक का प्रतीक है। वैराग्य का प्रतीक है नंदीश्वर है, और शर संपत्ति है भगवान कार्तिक है, षणमुख मानते उसको। कार्तिक के छह मुख है, षणमुख मानते। तो षणमुख का मतलब है शर संपत्ति है वो, और जो गिरिजा है उमा है, ये आपके जिज्ञासु है अर्थात मुमुक्षुता। ये चार यदि है तभी आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। इसलिए शिव का एक सगुण और निर्गुण माना है, सोपादिक और निरुपादिक। जो निरुपादिक स्वरूप है उसको अपवर्ग कहा गया है। मोक्ष का एक नाम है अपवर्ग, अर्थात पांच पवर्गों से रहित, प फ भ भ म इनसे रहित है। आगम में स्पष्ट कहा दिया है, पार्वती फणी बालिंदु भस्मा मंदाकिनी तथा पवर्गा रचिता मूर्ति अपवर्गा फलप्रदा। प का मतलब है पार्वती, फा का मतलब है फणी, सर्प है वासुकी है, ब का मतलब है बालेंदु चंद्रमा, और भ का मतलब है भस्म, म का मतलब है गंगा मंदाकिनी। ये पांचों के द्वारा भगवान का सगुण मूर्ति बना, पवर्ग रचिता मूर्ति, और अपवर्ग फलप्रदा। पांचों को हटा दीजिए तभी वह निर्गुण स्वरूप हो जाएगा, ये शिव स्वरूप है। इसलिए उसी को यह आत्मा बता रहे हैं। और भी एक जगह बता दिया है, आठ पाश है, हम लोग आठ पाशों से बंधा है, एक पाशा नहीं आठ पाशा, मतलब रस्सी, जिन रस्सी से हम बंधे हैं, इसलिए जीव हो रहे, जीव का अनुभव कर रहे हैं। आठ पाश से रहित है वो सदाशिव मान है, आत्मा माना है। घृण लज्जा भयाशंका जुगुप्सेति पंचमी कुलम शीलम तथा जाति रष्टो पाश प्रकीर्तितः पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः। पाश से मुक्त है सदाशिव आत्मा माना है। आठ पाश है, सबसे पहले वहां घृणा माना है, हम घृणा करते हैं एक दूसरे से। जो घृणा कर रहे हैं क्यों, अपने से हम भिन्न देख रहे। क्या अपने आप से कोई घृणा करते है? नहीं करते है, क्यों अपना मान रहे हैं। दूसरे से इसलिए घृणा कर रहे, वो अपने से भिन्न मान रहे। घृणा जब तक है तब तक हम जीव है। सारा संसार परमात्मा का है, उसका शरीर है, तो उसमें घृणा हम करते हैं, द्वेष करते हैं। मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं अथवा कुछ चबा रहे, चबाते चबाते दांत ने जीभ को चबा दिया, तो गुस्से से दांत को एक मुक्का मार दीजिए, अरे तूने जीभ को क्यों चबा दिया। किंतु नहीं मार सकते आप, क्यों, जीभ भी आपकी है, दांत भी आपकी है। आपको पता है दांत ने जीभ को चबा दिया, उसका दुख भी मुझे भोग रहे भोगना पड़ेगा। यदि दांत को मारेंगे तो वो दुख भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। वैसे ही सारा शरीर परमात्मा का है, विराट स्वरूप है, हमारा यदि मान लिया तो इसलिए घृणक क्यों होगा। इसलिए जग में बता दिया ममता न कर्तव्य। अपय दीक्षित जी बोल रहे ममता मत करो, यदि ममता नहीं छोड़ सकते सर्वत्र कर्तव्य सभी जगह में कर दीजिए, एक कुछ वस्तु में नहीं परिवार में नहीं सब देश में ममता कर दीजिए। सबसे उत्तम है ममता छोड़ना, नहीं छोड़ सकते हैं सर्वत्र कर्तव्य। तो इसलिए जो घृणा है इसे बंधे है, उससे रहित है वो सदाशिव है। दूसरा पाशा है लज्जा, लज्जा को भी पाशा माना जाता है। साधक अवस्था में होनी चाहिए लज्जा,